सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से हम लोग तृप्तिदीप प्रकरण में, जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया उसके विषय में चर्चा करते हैं कि वो जब बोध हो जाता है तो भोग इत्यादि रहने नहीं चाहिए। इसको लेकर के क्या है विचार चल रहा है। सैतालीसवें श्लोक में प्रश्न उठाते हैं, हम लोगों ने 46वें श्लोक तक किया था। 46वें श्लोक में ये कह दिया था कि जिसको तत्वबोध हो गया उसको मैं मर रहा हूं इस तरह की बुद्धि मान लीजिए होती है, तो इस बुद्धि होने के बाद उसका तत्व ज्ञान तो बाधित हो जाएगा। तो कहते हैं मैं मर रहा हूं, इतना कहने से अथवा कुछ देर के लिए मानने से उसकी उसका जो तत्व ज्ञान है वो बाधित नहीं होता है। क्यों बाधित नहीं होता है? क्योंकि उसका तत्व ज्ञान है, उसकी जो जीवन मुक्ति है वो जीवन मुक्ति बाधित नहीं होती है, इसलिए कि क्योंकि जीवन मुक्ति कोई व्रत नहीं है। तो जीवन मुक्ति क्या है? वस्तु सिद्धि है, जो किसी के द्वारा निर्माण की हुई नहीं है। वस्तु सिद्धि होने के कारण क्या है, मैं मर रहा हूं इतनी बुद्धि होने मात्र से वो तत्वज्ञान हटता नहीं है, तत्वज्ञान बाधित नहीं होता है, जीवन मुक्ति उसकी हटती नहीं है, क्योंकि वो वस्तु सिद्धि है, वो सिद्ध वस्तु है। अर्थात पहले भी वो जीवन मुक्ति था, आज भी है और कल भी रहेगा, तो फिर पहले क्यों नहीं लग रहा था अथवा आज क्यों नहीं लग रहा है? बस मैं जीवन मुक्त हूं इसकी हमें क्या हो गई, विस्मृति हो गई। मैं जीवन मुक्त हूं यहां से हट करके, अपने आप से हट करके, अपनी जीवन मुक्ति से हट करके जो बंधन है, बंधनात्मक है, उसमें हमने तादात्म्य कर लिया है, बस इतनी सी बात है। कि तो तादात्म्य करने पर भी अपना स्वरूप वहां से हटने वाला नहीं है, स्वरूप तो रहेगा ही, बस कुछ वो वहां पर क्या है आवरण आया हुआ सा है, उस आवरण को हटाने के लिए सब शास्त्र है। इसलिए वो जीवन मुक्ति वस्तु सिद्धि है, वो सिद्ध वस्तु है, उसको किसी के द्वारा तैयार नहीं किया जाता। जैसे अनुष्ठान को किया जाता है, अनुष्ठान करना होता है साधनों से, उसमें कोई खराबी आए तो वो व्रत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर ये बताया, ये बताने के बाद 47वें श्लोक की भूमिका में शंका करते हैं। भवतु रज्जु सर्पादि स्थले विपरीत ज्ञान निवृत्तो अपि तत्कार्य कंपादि अनुवृत्ति ही। ठीक है, आपने बताया कि जो रज्जु सर्प के स्थल में विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हो गई, मान लीजिए कि अब जो है सर्प नहीं भाषित हो रहा है, रस्सी को रस्सी के रूप में हम देख रहे हैं, अब सर्प की क्या है, सर्प भ्रम की निवृत्ति हो गई, विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हो गई। और आपने बताया कि भले ही वो भ्रम की निवृत्ति हो गई, विपरीत ज्ञान की निवृत्ति हो गई, तत्पर भी क्या रहता है, कुछ देर के लिए उस भ्रम ज्ञान का जो कार्य कुछ देर के लिए रहता है। तत्कार्य कंपन आदि अनुवृत्ति है, कंपन तो होता ही है, बोलता अभी भी क्या है, मुझे मेरे शरीर में थरकाप हो रहा है, घबराहट हो रही है अभी भी, जबकि ज्ञान हो गया। तो कहते हैं दृष्टांत प्रकृति दृष्टांते दशमे दशमस्तोमसी इति वाक्य विचार जन्य ज्ञानेन भ्रम निवृत्तो तत्कार्य अनुवृत्तिर न उपलभ्यते। यहां तो ठीक है, कि क्या है, सर्प भ्रम की निवृत्ति हो गई और यहां कंपन रहा। किंतु जिसको जो 10 लोग जो है कहा नदी पार कर रहे थे और पार कर लिया सभी ने, तो बोले अरे गिन लो सब। अब गिनने वाला क्या कर रहा है, अपने को छोड़ दे रहा है। तो छोड़ने के बाद तो वो तो 9 ही गिनती में 9 ही आ रहा है, तो वो सोचता है 10वां गया, 10वां गया तो इतना पेड़ दुखी हो जाता है कि वहां पेड़ के बगल में पेड़ को ही सिर मारने लगता है, हमारा 10वां चला गया, हमारा 10वां चला गया। और पेड़ को क्या है, अपना सिर पटक रहा है। तो कहते हैं अब वहां ये कहते हैं कि वहां पर तो ऐसा कोई दिखता नहीं, जैसे कंपन है ना, वो जैसे रहता है ज्ञान होने के बाद भी। इसी तरह जिसको 10वें का बोध हो गया, मैं ही 10वां हूं, उसमें क्या है, उस भ्रम निवृत्ति के बाद जो भ्रम के समय में जो हो रहा था वो कार्य दिखता नहीं है, तत्कार्य अनुवृत्ति न उपलब्ध्यते, वो कार्य उपलब्ध नहीं होता, ऐसी शंका है। तो कहते ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी जैसे सर्प भ्रम हटने पर जो कंपन रहा था उसका, इसी तरह इसमें भी रहता है। तो बताते हैं समझाकर, दशमोपि शिरस्ताडम, दशमोपि शिरस्ताडम रुदन बुद्धानरोदिति, रुदन बुद्ध्वानरोदिति शिरो व्रणस्तु मासेन, शिरो व्रणस्तु मासेन शनै शाम्यतिनो तदा, शनै शाम्यतिनो तदा। कहते हैं कि जो आप जो बता रहे हैं कि जिसको दशमस्तोमसी अर्थात जिसको बोध हो गया कि मैं ही 10वां हूं, उसमें भी क्या है, जैसे कंपनादि रहता है भ्रम की निवृत्ति के बाद, इसी तरह जिसको मैं 10वां हूं ऐसा बोध होने के बाद भी जैसे कंपन रूप दुख है, इसी प्रकार ये मैं 10वां हूं ऐसा जिसको बोध हुआ है उसमें भी क्या है, शिर ताड़न आदि का क्या है, पीड़ा दुख रहता है। कहते हैं दशमोपि शिरस्तारणम, अब वो उसको तो पता लग गया कि मैं 10वां हूं, ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से आपने दृष्टांत तो सुना होगा ना। हाँ, तो अब जब वो ताड़न जो है हुआ, अब पता लग गया मैं 10वां हूं, इसका मतलब क्या है, सबके सब सुरक्षित है, जिसने सिर पिटा था अब उसको बोध हो गया मैं ही 10वां हूं, तो मैं खोया ही नहीं हूं। किंतु जो उस ताड़न किया था, पेड़ को अपना सिर पटका था, वो बोध होने के बाद भी वो सिर को जो लगा था मार, उसकी पीड़ा रहेगी कि नहीं रहेगी, जैसे वहां कंपन रह रहा है, इसी तरह जिसको ये बोध हो गया कि मैं 10वां हूं, ये ज्ञात होने के बाद भी जो अब बोध होने के पहले सिर पटका था उसकी जो पीड़ा है वो ज्ञान होने के बाद भी रहेगी। जान उसको बोध होने पर भी रुंदन बुद्धवा न रोदिती, फिर रोता नहीं पर पीड़ा रहेगी, क्या है, रोएगा नहीं पर पीड़ा रहेगी उसको, रोना तो खोने का कारण वो रो रहा था ना, किंतु अब पता लगे कि मैं खोया नहीं हूं, किंतु पीड़ा होती है और रोना भी उसका नहीं होता, ये बातें होती है दोनों। शिरो व्रणस्तु भासेन शनैः शाम्यति नो तदा, शिरो व्रणस्तु क्या है, मासेन शनैः शाम्यति, कुछ जो शिर वेदना है अर्थात जो शिर को मारा था उसकी जो वेदना है, अथवा वो कटा होगा, घाव लगा होगा, वो धीरे धीरे क्या मासेन अर्थात कुछ मास के बाद वो अथवा 15 दिन 8 दिन 10 15 दिन महीना के बाद क्या है, शनै शनै शाम यति नो तदा, वहां पर क्या है इसी तरह होता है। आगे कहते हैं देखिए ठीक है, दशमो अपीति, दशमो अस्मीति ज्ञानोदये, मैं ही दसवां हूं। ये जब ज्ञान उदय होने पर क्या है, शिर ताड़न पूर्वकम रोदन मात्रम निवर्तते, जो शिर पटक पटकते हुए क्या है जो रोदन कर रहा था वो बंद हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। ताड़न जन्य व्रणस्तु अनुवर्तते, किंतु रोना बंद हो जाएगा, किंतु रोना और ताड़न बंद हो जाएगी, किंतु उस ताड़न का जो परिणाम दुख था पीड़ा थी वो तो चालू रहेगी। अनुवर्तत इति, इसी तरह क्या है जो ज्ञानी है उस ज्ञानी में भी क्या है, ज्ञान होने के बाद भी जैसे कुछ पीड़ा हो रही है, मैं मर रहा हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, इस तरह जो है ना वो बाद में भी होता रहेगा। ननु ज्ञानोत्तर काले भी संसार अनुवृत्त जीवन मुक्त है कुतः पुरुषार्थता। अब प्रश्न होता है ज्ञान के उत्तर काल में संसार अनुवृत्त, अब ज्ञान होने के बाद का संसार एक समाप्त होगा क्या? नहीं ना होगा, संसार तो रहेगा, उसका खाना पीना सोना, बोलेगा मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे नहाना है धोना है, सब बोलेगा करेगा। संसार अनुवृत्त, तो संसार की तो अनुवृत्ति हो रही है, जैसे अज्ञानी कहता है वैसे ज्ञानी भी कह रहा है। तो कहते जीवन मुक्त है कुतः पुरुषार्थता, जो जीवन मुक्ति रूप जो पुरुषार्थता अर्थात जीवन मुक्ति आनंद जिसको कहते हैं, जीवन मुक्ति का आनंद अथवा जीवन मुक्ति वो कैसे रहेगी जब संसार की अनुवृत्ति है, तो जीवन मुक्तता कैसे रहेगी, जीवन मुक्ति कैसे रहेगी जब संसार अनुवृत्त हो रहा, अनुवर्तन हो रहा है, ये शंका है। शंका समझ में आई? हाँ, तो कहते शंका मुक्ति लाभजन्य हर्षस्य तद्दुख आच्छादकस्य सत्वात्। नहीं, कहते हैं जो मुक्ति का जो लाभ है वो लाभ क्या है, हर्ष। यह हर्ष क्या करता है, जो संसार की अनुवृत्ति मतलब दुख, दुख मतलब संसार है, तो जो दुख की अनुवृत्ति है वो अनुवृत्ति क्या हो जाती है, दब जाती है। हाँ, मतलब वो रहता नहीं, उसका अनुभव नहीं होता। क्यों? जो मुक्तिजन्य जो आनंद है, हर्ष है, उस हर्ष के कारण वो दुख दब जाता है, वो दुख का पता नहीं लगता है। सत्वात् पुरुषार्थता इति दृष्टांत पूर्वकम आह, ये पुरुषार्थता रहती है अर्थात तो वो जीवन मुक्ति रहती है, जीवन मुक्त का आनंद रहता है, इसलिए संसार की अनुवृत्ति अर्थात दुख वो क्या है, हट जाता है, दब जाता है, आच्छादित हो जाता है। जैसे और आपको एक दृष्टांत देते हैं, अब क्रिकेट में खेल रहे हैं प्लेयर खिलाड़ी, कितना उनको ये करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मार लगता है बहुत जोरों से, किंतु जब जीत हो जाती है तो पता लगता है मार, वो तो भूल जाता है, जीत हो गई तो जितने हर्ष हो रहा है तो वो तो उसको पीड़ा का ही अनुभव नहीं, आनंद हो गया, तो वो जो पीड़ा है वो भूल जाता है। इसी तरह जीवन मुक्ति मिल गई तो जिन मुक्ति मिलने से उसको हर्ष होता है, आनंद होता है, उस आनंद के कारण ये जो तुच्छ दुख उसको पता ही नहीं लगता है। तो जीवन मुक्ति तो बहुत बड़ी है और संसार का दुख तो बहुत छोटा है, उसकी अनुभूति उसको नहीं होती, वो दब जाता है। इसी को समझा रहे दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत पूर्वक दशमामृतलाभेन दशमामृतलाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथाम जातो हर्षो व्रणव्यथाम। तिरोधत्ते मुक्तिलाभस् तिरोधत्ते मुक्तिलाभस् तथा प्रारब्ध दुःखिताम् तथा प्रारब्ध दुःखिताम्। ये कह रहे दशम अमृत लाभेन, जैसे कि दसवा जो था उसने किसका लाभ किया बोध होने के बाद, क्या मैं मरा नहीं हूं इसका लाभ किया। किसका लाभ किया? अरे मैं तो जीवित ही हूं, मतलब अमृत अमृत लाभेन, अर्थात मैं मरा नहीं अभी जिंदा हूं, मैं अमर हूं अभी भी मरा नहीं है। ये जब उसको लाभ होता है बोध हो जाता है जा तो हर्षो विरण व्यथा, वहां तो जो कट गया था कुछ मार लग गया था चाहे गूंगी चोट हो चाहे जैसी हो, अब जो पता लग गया मैं ही दसवा हूं, उस समय में वो दुख क्या हो जाता है उसका, भूल जाता है। इसी तरह ज्ञानी का भी जीवन मुक्ति मिल गई तो संसार का दुख संसार की अनुवृत्ति वो क्या हो जाता है, भूल जाता है, वो दब जाता है उस जीवन मुक्ति के सामने। जैसे यहां पर मैं मरा नहीं हूं ये जैसे ही बोध हो गया तो उसको हर्ष हो गया, लाभ हो गया, मैं अमर हूं अभी मरा नहीं हूं, जैसे ही उसको बोध पता लग गया वो पीड़ा गायब हो जाती है। तिरोधत्ते मुक्ति लाभ, मुक्ति लाभ से क्या हो जाता है, तिरोधित हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। प्रारब्ध दुखिताम, जो भी प्रारब्ध का दुख है वो रहता नहीं है। जैसे अज्ञानियों को जो है प्रारब्ध का दुख सताता है, चिंता उत्पन्न करता है, हाय हाय करता रहता है, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, वो नहीं उस चीज को तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसका ध्यान तो अपने कुटस्थ में रहता, अपने स्वरूप में ध्यान रहता, वो अपने कुटस्थ का ही क्या है वो चिंतन करता रहता है। इसीलिए शारीरिक पीड़ा अथवा शरीर से बहिर्भूत जो भी कुछ हो रहा है घटना, उस घटना का अथवा अपने शरीर के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसका कोई परिणाम होता नहीं, मस्त अपने मस्ती में चलता रहता है। जीवन मुक्ति व्रतम नेदम इति उक्तम तत्र व्रत अभावे किम आयातम इत्यतः आह। अब जो है ये 46वें श्लोक में बताया था कि जीवन मुक्ति कोई व्रत नहीं है, ये क्या है, वस्तु स्थिति है। क्या है? वस्तु स्थिति है, वो कोई ऐसी बनी बनाई बनाया हुआ चीज नहीं है, वस्तु स्थिति है। तो आपने जो जीवन मुक्ति को व्रत न कह के वस्तु स्थिति बताया, इसे क्या आ गया, आपको क्या लाभ हो गया वस्तु स्थिति कह करके, उसको वस्तु स्थिति बोल रहे आप, इसे क्या आ रहा है, क्या निष्पन्न हो रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है, इससे क्या निकल रहा है, तो बताते आह। प्रश्न समझ में आया ना? हाँ। व्रताभावाद् यदाध्यास व्रताभावाद् यदाध्यास तदा भूयो विविच्यताम् तदा भूयो विविच्यताम् रससेवी दिने भुंते रससेवी दिने भुंते भूयो भूयो यथा तथा भूयो भूयो यथा तथा। व्रताभावाद् यदा अध्यास तदा भूयो विविच्यताम्। कहते हैं व्रताभावाद्, व्रताभावाद् मतलब जीवन मुक्ति में व्रत का अभाव है, अर्थात जीवन मुक्ति व्रत नहीं है, उसमें व्रत का अभाव है जीवन मुक्ति में। तो उसमें क्या है, वस्तु स्थिति है। जीवन मुक्ति जो चीज है वो क्या है, वस्तु स्थिति है, वो व्रत नहीं है। तो उसमें व्रत का अभाव होने के कारण क्या है, यदा अध्यास तदा भूयो विविच्यता। जब तक आपको आपके भीतर का अध्यास नहीं हटता है तब तक हमें क्या करना है, चिंतन करते रहना है, श्रवण मनन निधिध्यासन करना है, उसका विवेचन करते रहना है। क्यों करना है, जो वस्तु स्थिति है उसको ठीक से जानना है, देखना, इतने भर के लिए और कुछ नहीं। उस जीवन मुक्ति को पैदा नहीं करना है, जो है उसी को सही देखने के लिए करना क्या है, श्रवण मनन निध्यासन करना है। तदा भूयो विविच्यता, अब बार बार क्या करिए, उसका चिंतन करते रहिए कि मैं और कुटस्थ एक है और शरीर अलग है, इसका विवेचन क्या है, इसका विचार करते रहना है। कैसे विचार करते रहना है, अभी प्रश्न का उत्तर दे रहे, ये व्रत नहीं है ये आपने कहकर के क्या सिद्ध किया है, सिद्ध यही किया कि व्रत नहीं है, कौन, जीवन मुक्ति। व्रत न होने के कारण ही क्या करना है, जब तक वस्तु स्थिति को हम समझ नहीं लेते तब तक हमको बार बार क्या है, चिंतन करना है, श्रवण मनन निध्यासन करना है, विचार करना है। और उस विचार में मान लीजिए रोज करते करते अचानक थोड़ा प्रमाद हो गया तो वो जो हमारा विचार हो रहा था वो नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि वो व्रत नहीं है। क्या है, जीवन मुक्ति जो स्थिति है उसको समझने के लिए जो हम जो कुछ कर रहे हैं वो उसमें थोड़ा व्यवधान आ गया तो कुछ प्रमाद हो जाए तो वो नष्ट होता नहीं है, क्योंकि व्रत नहीं है वो चीज। क्या व्रत नहीं है, विचार, विचार कोई व्रत होता नहीं है। श्रवण मनन निधि ध्यासन ये कोई व्रत नाम की चीज नहीं है, जिससे कि क्या है, थोड़ा भी गलती हो जाए तो वो नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। यही सिद्ध हो गया, जीवन मुक्ति व्रत नहीं है ये सिद्ध करके क्या है, आपने क्या समझाया, क्या सिद्ध किया कि बस हमें करना क्या है, उस जीवन मुक्ति रूपी जो स्थिति को समझने के लिए बार बार विचार करना है। और इस ये जो बार बार विचार है ये कोई शास्त्र में उसको व्रत नाम से कहा नहीं है, इसलिए कदाचित मान लीजिए आज विचार नहीं होगा, रोज कर रहे हो आज किसी कारण नहीं हो पाया तो वो विचार हमारा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो व्रत नहीं है। यही सिद्ध हो गया, जैसे कि बताते हैं कब तक करना है ये विचार, रस सेवी दिने भूंगते भूयो भूयो यथा तथा। रस सेवी अर्थात औषध का सेवन करने वाला, वो जब तक रोग नहीं जाता है तब तक वो औषध का क्या करता है, सेवन करता है। अब मान लीजिए शुगर है, रोज सेवन करता है, अब एक दिन गोली नहीं खाए भोजन के पहले, क्या वो कोई ऐसा व्रत था और वो भंग हो जाएगा, व्रत समझ करके भंग हो जाएगा क्या, क्या वो व्रत है, व्रत नहीं है वो। तो जब तक वो क्या है, रोग है, तब तक दवा क्या करनी, लेनी है। और एक दिन दवा नहीं लेने से वो भंग हो गया, अब दोबारा से शुरू करो, ऐसा नहीं है। वही कह रहे भूयो भूयो यथा तथा, तथा मतलब ऊपर वाला, जैसे रोगी रोज क्या करता है, जब तक रोग ठीक नहीं होता है तब तक दवा लेता रहता है, इसी तरह क्या है, जो जीवन मुक्ति जिसको चाहिए वो क्या करे, रोज विचार करता रहे। इसलिए वो जो विचार करने वाला व्यक्ति जीव, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरा व्रत है। यदि ऐसा समझेगा ये मेरा व्रत है तो मान लीजिए यदा कदाचित आज नहीं हो पाया तो फिर मन में क्या है, डर लगेगा, अरे मैंने इतने दिनों से किया और आज नहीं किया, सब बेकार हो गया, अब मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा, ऐसा भ्रम क्या उसमें आने लगेगा। इसलिए जीवन मुक्ति ये व्रत नहीं है। व्रत न होने के कारण जब तक वो सिद्ध नहीं होता है, वस्तु स्थिति में हम नहीं आते, तब तक उसका विचार करते रहना है। इसलिए विचार कम ज्यादा हो जाए तो वो भंग होने वाला नहीं है। टीका देख लीजिए। व्रताभावादिति पुनः पुनर्विचार करने दृष्टांतमाह। बार बार जो है, जब तक वो जीवन मुक्ति रूपी जो वस्तु स्थिति है वो हमारे सामने प्रकट नहीं होती है, अनुभव में नहीं आती कि मैं ही जीवन मुक्त हूं, ये जब तक अनुभव में नहीं आता है तब तक विचार करते रहना है। पुनर्विचार करने दृष्टांतम आह, इस पुनर्विचार के लिए दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं? यथा रस सेवी नर एकस्मिन् एव दिने क्षुधा आब्ध परिहाराय पुनः पुनर्भुंक्ते। जो है रस सेवी अर्थात औषध सेवन करने वाला, अथवा जो जिसको भूख लगती है, तो हम लोगों को तो भूख तो लगती है, तो क्या करता है? एकस्मिन् एव दिने, एक ही दिन में अपनी क्षुधा निवृत्ति करने के लिए खाता ही रहता है। तो क्षुधा एक रोग है, उस रोग को मिटाने के लिए जैसे बार बार क्या करता हो, औषधि खाता रहता है, अन्न खाता रहता है, पुनर्भुंगते। तदवत इसी तरह जब तक वो तृप्ति नहीं होती तब तक वो खाता रहेगा, तृप्ति होगी खाना बंद हो जाएगा। इसी तरह कहते हैं तदवत अध्यास निवृत्ता, ये अध्यास की निवृत्ति के लिए क्या करे? पुनः पुनः विवेक क्रियता, मनुष्य को क्या है, बार बार विचार करना चाहिए। उस विचार के लिए क्या है? श्रवण मन निधिध्यासन करना चाहिए, उसका तब क्या हो जाएगा, विचार होगा। आगे कहते हैं ज्ञानेन अनिवर्त्यस्य प्रारब्ध कर्म फलस्य केन तरिहि निवृत्ति। ये बताइए ज्ञान के द्वारा जो निवृत्त न होने वाला जो प्रारब्ध कर्म का जो फल है तो वो कैसे निवृत्त होगा? केन तरी निवृत्ति, जो प्रारब्ध कर्म का फल है ज्ञान होने के बाद भी है तो उस फल की निवृत्ति कैसी होगी, ये शंका है। ताड़नजन्य व्रणस्य औषधेनैव भोगेनैव निवृत्ति इति आह। जैसे कहते हैं ताड़नजन्य व्रणस्य, जो मत्था पीट रहा था अपना पेड़ को, अरे दसवा नहीं है, दसवा नहीं है, बहुत तो हो गया, किसी ने बता दिया, अरे तुम ही दसवे हो, गिन लो ये नौ और तुम दसवे हो, ये उसको पता लगे मैं ही दसवा हूं। किंतु जो अपने आप का सिर, अपना सिर पटकने के कारण जो उसको मार लगा था, तो वो जो मार लगा है वो भरने के लिए जो घाव है उसके लिए क्या करनी पड़ती है, औषधि करनी पड़ेगी। बहुत तो हो गया तत्पर भी क्या उसका औषधि करनी पड़ रही है। जैसे वहां पर बोध होते हुए भी उस घाव को भरने के लिए औषधि करनी पड़ रही है, इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद भी जो बचा हुआ कर्म भोग है वो भोग को समाप्त के लिए, कर्म फल को क्या है, समाप्त करने के लिए भोग करना होता है। जो प्रारब्ध का जो फल है उसको समाप्त करने के लिए क्या है, भोग ही एकमात्र साधन है उसको समाप्ति के लिए। जैसे ज्ञान होने के बाद भी इस घाव को भरने के लिए एक औषधि मात्र साधन है, इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद भी यदि कर्म फल है उसको समाप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसका भोग करके ही समाप्त करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपके पास उपाय नहीं है। उसको 50वें श्लोक के द्वारा बता रहे हैं। शमयत्यौषधेनायम् शमयत्यौषधेनायम् दशमास्वं व्रणं यथा दशमास्वं व्रणं यथा भोगेन शमयित्वैत भोगेन शमयित्वैतत् प्रारब्धम् उच्यते तथा प्रारब्धम् उच्यते तथा शमयति औषधेन अयम् दशमः स्वम वृणम् यथा। जैसे कि जो दसवा है, जिसको पता लग गया कि मैं ही दसवा हूं, तो उसको उस दसवे को जो घाव हुआ था वो कब शमन होगा, वो घाव कब भरेगा, तो कहते औषध लगाने के बाद ही होगा। वो औषध लगाता रहेगा, रोज दवा करता रहेगा, घाव भर जाएगा। वो मैं दसवा हूं ये बोध होते ही घाव समाप्त हुआ नहीं। इसी तरह वो ज्ञान होने के बाद भी तत्काल कर्मफल समाप्त होता नहीं है। वो क्या है, कर्मफल धीरे धीरे भोग करके ही समाप्त करना होता है, जैसे इधर दवा लगा करके घाव समाप्त होता है। भोगेन शमयित्वा एतत् प्रारब्धम् मुच्यते। भोग करके प्रारब्ध को क्या करना है, समाप्त करना, मुक्त हो जाएगा प्रारब्ध से। टीका देख लीजिए। अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूते। कहते हैं ये अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति, ये दो अवस्था किसकी, जीव में। ऐसा कहा है, किसमें कहा है, जो आत्मानं चित विजानीयात्, इस मंत्र में बताया था उत्तरार्ध में कि क्या है, आत्मानं चित विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरि। ये जो श्रुति वाक्य है, इस श्रुति वाक्य में क्या बताया है, अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति, ये दो अवस्था बताई। ये किसके द्वारा बताया, ये जो ये प्रकरण जिस मंत्र से आरंभ हुआ उस मंत्र का उत्तरार्ध क्या है, आत्मानं चेत विजानीयात् किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। ये जो उत्तरार्ध है, इस उत्तरार्ध के द्वारा क्या बताया है, जीव की दो अवस्था बताई, कौन सी अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति, ये क्या है, उस जीव की स्थिति है। इससे पहले इसी प्रकरण में 33वें श्लोक में सात स्थिति बताई, उन सात स्थितियों में दो स्थिति का वर्णन इस मंत्र में किया, जिस मंत्र से प्रकरण आरंभ हुआ था, इसी के विषय में चर्चा करते हैं। आत्मानं चेत इति श्रुति रित्यनेन श्लोकेन, श्रुति के द्वारा और श्लोक के द्वारा यही बात बताइए। श्रुति कौन सी, अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे ब्रूते, ये श्रुति। और इसी श्रुति वाक्य का अर्थ क्या है, इस श्लोक में किया उत्तरार्ध में, जो पहला वाला जिस श्लोक से ये प्रकरण आरंभ हुआ। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। कहते हैं आत्मानं चेद विजानीयात्, यदि आत्मा को जिस पुरुष ने क्या है जान लिया, तो वो किम इच्छन अर्थात किस मिथ्या वस्तु के लिए, कस्य काम आय और किस मिथ्या भोक्ता के लिए, शरीरम अनुसंजरित अर्थात इस शरीर के पीछे स्वयं तपेगा। जिसको बोध हो गया कि ये संपूर्ण क्या है, अनात्मा वस्तु है, तो किस अनात्मा वस्तु के लिए और किस जो है मिथ्या भोक्ता के लिए उस शरीर को वो ज्ञानी अपने को तपाएगा। इस शरीर को कौन तपाता है, शरीर के पीछे कौन तपता है? अज्ञानी क्या करता है, ये शरीर के पीछे तपता है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि जो वस्तु हम प्राप्त कर रहे हैं अथवा जिसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं वो अनात्मा वस्तु ही मिथ्या वस्तु है, और जो चिदाभास है वो भी मिथ्या है। तो दोनों बातें समझ में आ गई जिसको, तो कहते हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष उस चिदाभास के लिए और उस मिथ्या वस्तु के लिए इस शरीर के पीछे अपने को क्यों तपाएगा? ये जो अर्थ है, इस अर्थ में दो बातें बताइए, कौन सी? एक अपरोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति, ये दो स्थितियां इस मंत्र में बताइए। इसी स्थिति को बताने के लिए मंत्र है ये। इत्यस्मिन् मंत्रे परोक्ष ज्ञान शोक निवृत्त्याख्ये जीवा अवस्थे द्वे अभिहिते, अभिहिते अर्थात कथन किया, क्या किया है? इत्यस्मिन् मंत्रे अर्थात इस मंत्र में, कौन से मंत्र में? आत्मानं चित् विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। ये जो श्रुति है, ये मंत्र है, इस मंत्र में परोक्ष ज्ञान और शोक निवृत्ति, परोक्ष ज्ञान होना एक अवस्था है और शोक की निवृत्ति होना एक दूसरी का अवस्था, अर्थात दो अवस्था को इस मंत्र में क्या है, कथन किया है। अभिहिते इति उक्तम, ये पहले बता चुके हैं, इदानीम अब इस समय में, तद अभिधान सुचिताम जीवस्य सप्तमी तृप्ति लक्षण अवस्थाम वृत्तानुकीर्तन पूर्वकम वक्तुम आरभते। अब कहते हैं इदानीम इस समय में, तद अभिधान सुचिताम, जो इससे पहले 33वें श्लोक में, इस प्रकरण का 33वां जो श्लोक, उस श्लोक में क्या है, जीव की जो सप्तम अवस्था अर्थात स्थिति, उस स्थिति को क्या है, वो कौन सी स्थिति है? तृप्ति, निरंकुशा तृप्ति। उस तृप्ति रूप लक्षण को, लक्षणा अवस्थाम वृत्तानुकीर्तना पूर्वकम, जो पहला वृत्तांत हुआ था उसी का दोबारा अनुकीर्तन अर्थात दोबारा कीर्तन करके, अर्थात उसको दोबारा हमारे सामने क्या प्रस्तुत करते हुए क्या है, बताने के लिए क्या आरंभ करते हैं। किमच्छन्निति वाक्योक्त किमिच्छन्निति वाक्योक्त शोकमोक्ष उदीरितः शोकमोक्ष उदीरितः आभासस्य ह्यवस्थैषा, आभासस्य ह्यवस्थैषा षष्ठी तृप्तिस्तु सप्तमी, षष्ठी तृप्तिस्तु सप्तमी। कहते हैं किमिच्छन इति वाक्य उक्त, ये जो वाक्य था ना मंत्र का, इस वाक्य में कहा है, क्या कहा है? शोक मोक्ष उदीरित, इस वाक्य में ये कथन, उदीरित मतलब कथन हुआ है, क्या कथन हुआ है? शोक मोक्ष अर्थात शोक की निवृत्ति, इसका कथन है, मतलब इस वाक्य में ये बताया, इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि ये जो जीव की अवस्था क्या, शोक निवृत्ति, शोक से मुक्ति, शोक से मोक्ष, आभासस्य ही, ये आभास का क्या हो गया, शोक निवृत्त हो जाता है। कब? वो जब जान लेता है अपने स्वरूप को, आत्मा को जान लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, तो इस आभास अर्थात इस जीव का शोक निवृत्त हो जाता है। ये षष्ठी क्या है, स्थिति है, माने छठी भी स्थिति है, और सातवीं स्थिति क्या है उस जिसका शोक निवृत्त हो गया तो तृप्तिस्तु सप्तमी, सातवीं अवस्था अर्थात सातवीं स्थिति है यह तृप्ति, अर्थात वो तृप्त हो जाता है। अब उसको कुछ कुछ करने जैसा शेष रहता ही नहीं है। नहीं भाई अभी ये मुझे करना शेष बाकी है, अभी ये मुझे करना चाहिए, इस तरह की भावना, इस तरह की मन में कामना ही कुछ जगती ही नहीं है, क्योंकि वो तृप्त हो गया, कुछ करने जैसा अब शेष रहा ही नहीं है, वो तृप्ति हो गई उसकी। किम इच्छन इति, टीका देख लीजिए, किम इच्छन इति उत्तरार्धेन अभिहितो, ये जो मंत्र का उत्तरार्ध है उस मंत्र के उत्तरार्ध के द्वारा क्या है अभिहितार्थात कथन किया है, क्या यह शोक मोक्ष अर्थात उस शोक से मुक्त हो जाता है ये बताया। स एतावता ग्रंथ संदर्भेण उदीरितो, अर्थात इस ग्रंथ अर्थात इस मंत्र का जो उत्तरार्ध है, इस मंत्र के उत्तरार्ध के द्वारा क्या है उदीरित अर्थात अभिहित अर्थात कथित कथन किया है। क्या कथन किया है, शोक निवृत्ति अर्थात शोक से मोक्ष, इस मंत्र में उसका कथन किया है। और ये शोक मोक्ष क्या है, छठवीं स्थिति अवस्था, एषा अज्ञानम आवृत्तिस्तद्वद् विक्षेपश्च परोक्षः धीहि, ये अभी पूरा का पूरा श्लोक उठा रहे अभी क्या है, अज्ञानम आवृत्तिस्तद्वद् विक्षेपश्च परोक्ष धीहि अपरोक्षमति शोक मोक्षस्तृप्तिर्निरंकुशा, ये पूरा का पूरा श्लोक यहाँ पर उठा रहे, इसी प्रकरण का 33वां जो श्लोक है उसको यहाँ पर उठा के रख रहे हैं। तो वो सात स्थितियां कौन कौन है वो बता रहे हैं। अज्ञान ये सर्वप्रथम चिदाभास की स्थिति है, आवृत्ति आवरण ये क्या है दूसरी, तीसरी कौन है विक्षेप, चौथी परोक्षधि, छठवी अपरोक्षधि, शोक मोक्षो, हाँ ये पांचवी हो गई, छठवी हो गई, शोक मोक्षो छठवी और तृप्ति सातवीं हो गई। तो इसी के विषय में ज्यादा आपको समझाने की जरूरत है क्या, समझाना पड़ेगा। तो कहते हैं अज्ञान, अज्ञान आप जानते ही हैं कि क्या अज्ञान है, हमारे भीतर आत्मा का क्या है अज्ञान है, आत्मा का बोध अभी हमें नहीं है, हम शरीर को ही मान रहे हैं, ये अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण क्या हो गया, आवरण आ गया, वो आवरण में दो शक्ति है, अज्ञान की दो शक्ति है आवरण और एक विक्षेप, तो ये तीन हो गए। आवरण क्या करता है, स्वरूप को ढकता है, और वही अज्ञान की दूसरी शक्ति क्या करती है, विक्षेप करती, विक्षेप करती का मतलब क्या करती है, जो वस्तु जैसी है वैसे न दिखा करके विपरीत रूप में दिखा देती है। जैसे रस्सी का अज्ञान है तो रस्सी का अज्ञान के कारण क्या हो गया, उस अज्ञान में दो शक्ति थी आवरण एक और विक्षेप, उस पर आवरण डाल दिया और डाल करके क्या कर दिया, उसी रस्सी को सांप के रूप में दिखाया, उसको कहते विक्षेप। उसके बाद क्या हो गया, जब किसी साधन के द्वारा हमने क्या किया, जान लिया मैंने अज्ञान को हटा दिया, तो पहले क्या हो गया हमें परोक्षधि अर्थात परोक्ष ज्ञान हो गया, दूर से देखा टार चाहा ये क्या है रस्सी है, किंतु ये परोक्ष हो गया, जब उसको हाथ लगाएंगे तब क्या हो जाएगा वो अपरोक्ष। इसी तरह शास्त्र के द्वारा क्या हमें परोक्ष ज्ञान हो गया, जब हम उसका सतत मनन निधिध्यासन करते रहेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा अपरोक्ष स्थिति आ जाएगी, और उस अपरोक्ष स्थिति के बाद क्या है शोक निवृत्ति हो जाएगी, ये छठवीं स्थिति आ जाएगी, और शोक निवृत्ति के बाद क्या है और तृप्त हो जाएगा, ये सातवीं स्थिति में वो आ जाता है। इत्यनेन श्लोकाभिहितासु सप्तसु जीवावस्थासु षष्ठी इत्यतः, इस श्लोक के द्वारा ये जो बताया हुआ श्लोक, इस श्लोक में जो कथन किया है सात स्थिति, उसमें जो है जीवावस्था सु उन जीव की जो अवस्था है साथ उन अवस्थाओं में जो छठी अवस्था है किसकी चिदाभास की आभासस्य वो कौन सी है शोक मोक्ष ये छठवी अवस्था है स्थिति है। और सप्तमी व्याख्यायते इति शेष है सप्तमी का क्या है व्याख्यान करते हैं शेष के द्वारा क्या तृप्ति क्या है उस चिदाभास की सातवी अवस्था है स्थिति है। अपरोक्ष ज्ञान जन्याया तृप्तिर निरंकुशत्व अपरोक्ष जो ज्ञान है उस अपरोक्ष ज्ञान से जन्य जो तृप्ति है वो निरंकुशा है अर्थात निरतिशय है वो सातिशय नहीं है किसी के किसी साधन के अभाव में समाप्त होने वाली नहीं है। और उसकी जो अंकुश वाली तृप्ति है वो कैसी है सातिशय है अंकुश वाली है प्रतियोगी प्रदर्शन पुरस्सरम इस निरंकुश स्थिति की जो विरोधी प्रतियोगी मतलब विरोधी तो निरंकुश जो तृप्ति है उसकी विरोधी कौन है तृप्ति संकुश एक निरंकुश हो गया और एक संकुश हो गया अर्थात अंकुश वाली तृप्ति जिस तृप्ति में क्या अंकुश लग जाता है ऐसी जो तृप्ति है दिखा करके निरंकुश तृप्ति के विषय में चर्चा करेंगे उसके विषय में हम लोग कल विचार करते हैं। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।